मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 23 जनवरी 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी कल जमकर वसंत का स्वागत किया होगा और इस प्रकृति ने हम सबका तो किया ही है। और आज सुबह सुबह जहां से मैं ये अपना कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस शहर से, प्यारा सा, बहुत ही छोटा नन्हा सा और खूबसूरत शहर भोपाल, वहां सुबह से आज इतनी खूबसूरत बयार बह रही है। मैं हवा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं बयार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और इतनी छेड़खानी कर रही है कि खूब मजा आ रहा है। और इसे ही मैं मानकर चलता हूं कि प्रकृति हम सब का स्वागत कर रही है। मित्रों मौसम का वह बदलाव आप सबके यहां भी शुरू हो गया होगा और आप सब भी अब ठंड से मुक्ति पाकर एक नई ऊर्जा से धीरे 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 अपने आप को समृद्ध कर रहे होंगे। तो मित्रों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और अभिनंदन भी है। आज मैं एक बहुत ही हिंदुस्तान से जुड़ी, जो मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है, उस पर बात करने जा रहा हूं। हालांकि मुझे मालूम है कि जब मैं शीर्षक की बात करूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि यह सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या हो सकती है। दरअसल इसका चुनाव मैंने नहीं किया है। पिछले सप्ताह मुझे अपने एक प्रिय श्रोता का मेल मिला, अपेक्षाकृत थोड़ा लंबा मेल था। लंबा मेल का मतलब मत समझिएगा कि आधा पेज और एक पेज का मेल था, मेरे पास इतने लंबे मेल भी आते हैं। अपेक्षाकृत मैंने कहा कि वो करीब 10-12 पंक्तियों का वो मेल था। उसमें उन्होंने विस्तार से अपनी बात कही थी और उनके बात के कहने के केंद्र में यह जानने की जिज्ञासा थी कि सर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या लक और अनलक, यानी लकी और अनलकी जैसी कोई चीज होती है। उन्होंने अपनी समस्या ये रखी थी कि मैं कुछ लोगों को देखता हूं और हमारी आपस में बातचीत भी होती है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको सफलता ही सफलता मिलती चली जाती है, वो जिस काम में भी हाथ डालते हैं उस काम में वो सफल हो जाते हैं, और जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास असफलताओं की सूची होती है, वो जिस काम को भी छेड़ते हैं हाथ में लेते हैं वो असफल हो जाते हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है, क्या लक जैसी कोई चीज होती है, भाग्य है, पूर्व जन्म है, जो जो है, मतलब समस्या मित्रों ये थी। होता क्या है देखिए दोस्तों, हमारे पास सोच विचार करने के दो तरीके होते हैं, या यूं कह लीजिए कि हमारे पास दो कसौटियां होती हैं जिस पर हम किसी भी चीज को परख सकते हैं, जांच परख सकते हैं, और मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना भी चाहिए। एक कसौटी तो इमोशंस की है जिस पर मैं बहुत बातें कर चुका हूं। इमोशंस, जब हम इमोशन की बात करते हैं तो ये नहीं कि भावनाओं के प्रवाह में आकर के किसी भी समस्या की जांच पड़ताल कर रहा है, नॉट एट ऑल। इमोशन का मतलब ये होता है कि हम फिर उसके लिए तर्क का सहारा नहीं लेते, जो बात हम परंपराओं से सुनते आ रहे हैं, हमारे दिमाग में बसी हुई है, रची बसी है, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, बस उनको आधार बना करके अपना निष्कर्ष दे देते हैं। तो बट नेचुरल है कि जब हम इस आधार पर इस समस्या को जांचेंगे परखेंगे कि वह व्यक्ति बहुत अनलकी है, चलिए हम अनलकी से शुरुआत करते हैं, तो इमोशंस के आधार पर हमारे हाथ में निष्कर्ष पहले से मौजूद है। दरअसल हम उसी को प्रूफ कर रहे हैं जो हमारे दिमाग में पहले से है, और वो क्या है कि बेचारे का भाग्य ही खराब है, राइट, पता नहीं पिछले जन्म में क्या दुष्कर्म किए होंगे, उसका फल भुगत रहा है, उसको तो लोग पसंद ही नहीं करते, मतलब इस तरह की बातें हम करने लगते हैं। यानी कि हम सारा का सारा दायित्व तो किस पर डाल देते हैं, दूसरे पर डाल देते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं उसका भाग्य खराब है, अब उसको कैसे देखा जाए, भाग्य को कैसे देखा जाए, कहां लिखा हुआ है, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे उसको देखा जाए, किस मैग्नीफाई ग्लास से उसको समझा जाए, भगवान जाने। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इस परंपरा के जो लोग हैं, परंपरा ही मैं कहूंगा, उनकी सबसे बड़ी ताकत तो यही है, आपसे कहेंगे कि हाँ बताइए कैसे, आप बताइए कि भाग्य कैसे नहीं होता है, और फिर वो एक दो उदाहरण ऐसे दे भी देंगे कि आप भी चुप हो जाएंगे कि हाँ यार अब कैसे कहें, अब इसका कैसे जवाब दें। तो चुप हो जाना ज्यादा अच्छा है क्योंकि समझा नहीं सकते, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना, आपने गाने की लाइन सुनी होगी। अब हम लेते हैं लकी को, जो आदमी हर जगह सफल हो रहा है, वो जहां जा रहा है सफल हो रहा है। मुझे अभी वर्ल्ड बुक फेयर में ही एक हमारे स्टूडेंट मिले, जो शायद सेकेंड बैच के स्टूडेंट थे, जिनकी चर्चा मैंने की भी थी, जिन्हें बधाई दी थी। उन्होंने कहा कि सर, यहां से क्लास करके जाने के बाद जो भी मैं एग्जाम में बैठा, तो मेरे पास आज कितने बता रहे थे सर, 6-7 अपॉइंटमेंट लेटर है। और इससे पहले वो लंबे समय तक तैयारी कर रहे थे, उनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, वो उनके पास कुछ नहीं था। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब कुछ यहां क्लास में आने की वजह से हो गया, नॉट एट ऑल। वो तो फिर आने की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है कि उनको वो चीज मिली जो चीज चाहिए थी, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इसका जब हम बहुत ही तटस्थ रूप से मूल्यांकन करेंगे, यानी कि अब तर्क की कसौटी पर कसेंगे, जो दूसरा आधार है कि आप चीजों को तर्क के आधार पर सोचिए, उस कसौटी पर कसिए, विचार कीजिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि वह स्टूडेंट कई साल से तैयारी कर रहा था, लगातार 2-3 साल से तैयारी कर रहा था। तो तैयारी जो कर रहा था, वो चीजें तो उसके पास थी, मतलब नॉलेज तो थी ना, पढ़ ही रहा होगा आखिर में, लेकिन शायद दिशा ठीक न हो, तरीका ठीक न हो, या अपनी पढ़ी हुई चीजों को वो व्यवस्थित करके उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हो। क्योंकि अगर मेरे पास साधन है तो उसका सही तरीके से मैं इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, तो साधन अपने आप में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहां क्लास में आने के बाद हो सकता है कि उसको वो दिशा मिल गई हो, उसको पता लग गया हो कि मेरे मुझे अपने इन साधनों का इस्तेमाल कैसे करना है, और पता लगने के बाद उसने उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि एक ही पर शुरू किया होगा, उसने उसका इस्तेमाल सभी पर करना शुरू किया। और देखिए, चीजें तो ऐसी होती हैं कि अगर आपने एक चीज पर सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर लिया, तो आप जितनी चीजों पर भी उसका इस्तेमाल करते चले जाएंगे, क्योंकि चीज तो वही थी, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, तो चीजें तो वही चाहिए। तो आप जहां भी अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सफलता मिल रही है। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप इसे क्या कहते हैं, उस लड़के को आप लकी मानते हैं या उस लड़के को आप कुशल मानते हैं, उसको आप दक्ष मानते हैं। मैं उसे कुशल मानता हूं, मैं उसे दक्ष मानता हूं, मैं उसे उसकी योग्यता मानता हूं, योग्यता जो उसने अपनी मेहनत से अपने अंदर पैदा की है। और जब आप एक बार योग्य हो जाते हैं, एक बार आपने बेसिक चीजें प्राप्त कर ली, तो आप देखिए कि आप जब जहां जाएंगे वहीं आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और अगर ये योग्यता आप में नहीं है, तो आप जहां जाएंगे वहीं आप असफल होंगे। तो इसमें लकी और अनलकी का तो कोई सवाल ही, मतलब मेरी दृष्टि से, पैदा नहीं होता है। आपको ऐसे बहुत से बिजनेसमैन मिलेंगे, मैंने देखा है कि वो कुछ भी काम कर ले उसमें सफल हो जाते हैं। और मैं ऐसे बहुत से बिजनेसमैन को जानता हूं, बहुत से बिजनेसमैन को जानता हूं मित्रों, कि जिन्होंने 3-4 साल में खूब कमाया, अगले साल सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ गंवा दिया, सड़क पर आ गए, और कुछ दिनों को 3-4 साल बाद फिर से कमा लिया, फिर से सड़क पर आ गए, और फिर से एम्पायर खड़ा कर लिया। ऐसे भी लोग हैं। तो ये बार बार गंवा भी रहे हैं, तो उस समय क्या वो अनलकी हो जाते हैं, और फिर कमा रहे हैं तो क्या उस समय लकी हो जाते हैं? नहीं, वो गंवा इसलिए रहे हैं कि वो ज्यादा जोखिम ले लेते हैं, कि उनमें साहस है, उस समय वो गायब हो जाते हैं, फिर से वो इसलिए रिकवर कर लेते हैं, फिर से इसलिए कमा लेते हैं, क्योंकि उनमें कमाने की क्षमता है, योग्यता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं, जिसमें भी हाथ डालते हैं वही नुकसान दे देते हैं, अगर वो दूसरों का काम करने लगे तो वहां से भी निकाल दिए जाते हैं। तो आप दूसरों का भी जब काम करने के लायक अपने आप को नहीं बना पाए हैं, तो अपना काम करना तो बहुत बड़ा जोखिम की बात, बहुत बड़े जोखिम की बात होती है। उसमें तो और अधिक योग्यता चाहिए और अधिक मेहनत चाहिए। मित्रों, मैंने शुरुआत में कहा था कि यह हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं इनफैक्ट इसे एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में लेता हूं, क्योंकि हम अपनी सारी कमजोरियों, सारी असफलताओं का श्रेय इस पूर्व जन्म और भाग्य को दे करके अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। और जब अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, तो फिर हम अपने विकास और सुधार की बात कैसे सोचेंगे? कभी उस पर विचार ही नहीं करेंगे। हम तो अपने आप को परफेक्ट समझ रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से ठीक है। आज सुबह सुबह की बात मैं बताऊं कि 2 मेड सर्वेंट हमारे घर में जब आई हुई थी, तो आपस में बात कर रही थी, मैंने उनकी बात सुनी। उसमें कह रही थी कि एक के पास तो काम ही नहीं है, बिचारी के पास एक काम था वो भी कल छूट गया, तो वो अपने भाग्य को कोसती रहती है। और वो भाग्य को कोसती भी कह रही थी, वही कह रही थी कि उसके पास देखो उसके पास काम ही काम है, उसने क्या किस्मत पाई है, सब उसको काम देना चाहते हैं। वो तो इतनी ज्यादा घमंडी हो गई है कि वो काम के लिए मना भी कर देती है कि नहीं नहीं मैं काम नहीं करूंगी। अरे भैया वो घमंडी नहीं हुई है, उसके पास इतना ज्यादा काम है कि अब उसके पास समय ही नहीं है तो वो कैसे दूसरा काम ले ले। और उसको जो काम दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो काम करती है, अच्छे से करती है, डिसिप्लिन तरीके से करती है, तो उसको लोग पसंद करते हैं। और लोग काम दूसरों को इसलिए देते हैं कि उनका वो काम हो जाए, वो कर देती है। तुम करती नहीं हो, तुमको कौन देगा? तुमको तो जिन्होंने दे दिया है वो भी पछता रहे हैं और बर्दाश्त करते रहते हैं, और एक सीमा के बाद जब उनके नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है तो तुमको भी निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, इसमें कोई रहस्य नहीं है, ये जिंदगी का बहुत ही साधारण सामान्य सा फलसफा है कि जो करेगा उसे मिलेगा और जो नहीं करेगा उसे जो मिल चुका है वह भी उसके पास से गायब हो जाएगा। मित्रों मेरा तो कम से कम सिद्धांत यही है और मैं मानकर चलता हूं कि जिस दिन हमारा देश इसे स्वीकार कर लेगा, उसकी चेतना में यह रच बस जाएगा, तो इस देश को महानतम राष्ट्र बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।